अध्याय 8, 1898 ईस्वी का सुधार आंदोलन, द रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 1898। यह अध्याय दिल्ली विश्वविद्यालय के हंस राज कॉलेज के प्राध्यापक एस के श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। 19वीं शताब्दी के चीन में अनेक ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती देखी गई जिन्होंने लोगों का यह भ्रम दूर कर दिया कि चीन में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। पश्चिमी व्यापार तथा आक्रमणकारी वाणिज्यवाद के प्रभाव के फलस्वरूप चीनी समाज ने सामंती शोषण की चरम सीमा देखी। इसने धीरे धीरे चीन की स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर दिया। अन्य देशों के साथ असमान संबंध बनाते बनाते चीन धीरे धीरे एक अर्ध उपनिवेश बन गया। मांचू सरकार इस समस्या को सुलझाने में असफल रही। इस दौरान अनेक आंदोलन हुए जिनमें थाइफिंग, नियेन तथा मुस्लिम आंदोलन मुख्य थे। इस स्थिति से निपटने के लिए मांचू सरकार के पास साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ समझौता करने के अतिरिक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मांचू सरकार ने चीन में परिवर्तन की मांग के प्रति कठोरता का रुख अपनाया। मांचू सरकार के इस रवैये से उनका अपना भविष्य अंधकारमय हो गया। हालांकि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में उन्होंने सुधार के कुछ प्रयास किए, किंतु वह न केवल देर से लागू किए गए बल्कि लोगों की आकांक्षाओं से बहुत कम थे। टू लेट एंड टू लिटिल, सही समय बीत जाने पर उन्हें लागू करने से मांचू सरकार स्वयं को न बचा सकी। चीन में परिवर्तन की आवश्यकता तथा सुधार की मांग एक पुरानी बुद्धिजीवी परंपरा का अभिन्न अंग थी। मिंग वंश के अंतिम वर्षों में तथा छिंग वंश के शासन के प्रारंभिक काल में बुद्धिजीवी वर्ग ने न केवल कन्फ्यूशियसवाद की शिक्षाओं के परंपरागत अर्थ के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि पुराने ग्रंथों को पुनः सही अर्थों के साथ निरीक्षण करने की मांग की। इन बुद्धिजीवियों का अनुसरण करते हुए 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भी कुछ ऐसे ही प्रयास किए गए थे, किंतु इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन बुद्धिजीवियों को बाद में तब याद किया गया जब चीनी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सैनिक व्यवस्था की कमजोरियां पश्चिमी शक्तियों से संपर्क के बाद सामने आई। हुआंग शुगशी तथा खू यनवू ऐसे प्रमुख बुद्धिजीवी थे जिन्होंने न केवल सुधारों की मांग की बल्कि विदेशी शासन का भी विरोध किया। खू यनवू ने मुख्यतया परंपरागत नियमों को पूरी तरह बदलकर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार पूर्ण सुधारों पर जोर दिया। हालांकि चीन 16वीं शताब्दी के अंत तथा 17वीं शताब्दी के आरंभ में ईसाई धर्म प्रचारकों जिन्होंने अनुवादों द्वारा चीन को पश्चिमी ज्ञान से अवगत कराया के कारण पश्चिमी सभ्यता के संपर्क में आया, किंतु कुछ अधिकारियों को चीन में प्रशासनिक सुधार लाने का विचार अफीम युद्धों के पश्चात ही आया। तजछियांग अथवा आत्मसुदृढ़ीकरण आंदोलन का अंत 1894 से 95 ईस्वी के चीन जापान युद्ध में जापान के हाथों चीन की पराजय के साथ ही हो गया। शिमोनोसेकी की संधि से साम्राज्यवाद का एक नया दौर शुरू हुआ। अब विभिन्न विदेशी शक्तियां चीन में भौमिक अधिकारों के लिए आपस में झगड़ रही थी। अब निर्मित वस्तुओं के निर्यात की जगह पूंजी बाहर जाने लगी। इस संधि ने जापान को चीन के व्यापारिक बंदरगाहों में फैक्ट्रियां लगाने की अनुमति प्रदान की, जिससे बाद में सर्वाधिक प्रिय राष्ट्र के सिद्धांत मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉजेज के अनुसार अन्य विदेशियों को भी यह अधिकार प्राप्त हुआ। 1818 से 1898 ईस्वी तक विदेशियों ने चीन में कपड़ा मिले, आटा मिले, कोल्हू तथा अन्य कई उद्योग आरंभ किए जिनसे चीन के घरेलू उद्योगों को काफी धक्का पहुंचा। चीन को हर्जाना देने के लिए चीन में ही स्थित विदेशी बैंकों से 30 करोड़ चांदी के तायलों का कर्जा लेना पड़ा। इस कर्जे के लिए चीनी सरकार को अपने स्वयं के कई महत्वपूर्ण स्रोत गिरवी रखने पड़े। क्योंकि कर्जा बहुत कठोर शर्तों पर मिला था। वस्तुतः इन विदेशी बैंकों का चीन की आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण हो गया। यह धन रेलवे लाइनें बिछाने, खाने खोदने, नोट छापने तथा विदेशी मुद्रा को एकाधिकार में रखने के लिए प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार सारा मुद्रा बाजार विदेशी शक्तियों के नियंत्रण में आ गया। इस दौरान समस्त चीन का विभाजन विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में हो चुका था। जर्मनी के चियाओचोउ तथा रूस द्वारा लियाओतुंग पर अधिकार के पश्चात अन्य देश भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी चीन पर भौमिक अधिकार प्राप्त करने की कोशिश शुरू कर दी। छिंग सरकार, जिसने शुरू से विदेशी सरकार का विरोध नहीं किया, इस प्रकार के साम्राज्यवाद का मुकाबला करने में असमर्थ था। इस पृष्ठभूमि में 1898 ईस्वी का सुधार आंदोलन, फूल जो एक दिन के लिए खिला, फ्लावर डेट ब्लूम्ड फॉर अ डे, शुरू हुआ और फिर मिट गया। पश्चिमी प्रभाव को लोगों तक पहुंचाने के मुख्य कड़ी धर्म प्रचारक थे। प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने पश्चिमी विचार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई एवं सामान्य ज्ञान प्रसारक समाज, सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ क्रिश्चियन एंड जनरल नॉलेज के प्रकाशन काफी प्रभावशाली थे, जिन्होंने चीनी छापेखाने को नए तथा अधिक संख्या में पाठक दिए। धर्म प्रचारकों ने ही चीन में सर्वप्रथम अखबार निकालने तथा बाद में स्वतंत्र तथा अन्य चीनियों ने उनका अनुसरण किया। नए पत्र पत्रिकाएं भी काफी संख्या में छपने लगी। ये सभी सुधारों के पक्ष में थे। यह पत्र पत्रिकाएं केवल संधि बंदरगाहों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि अधिकतर राज्यों में भी छपते थे। इनका संबंध अध्ययन समाजों से था, जो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक संस्थाएं थी। मैकेंजी द्वारा लिखित 19वीं शताब्दी एक इतिहास, एक ऐसी प्रमुख पश्चिमी पुस्तक थी जिसने लोगों को काफी प्रभावित किया तथा यूरोप के विचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। इसने स्वर्ण युग की उस धारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जो चीन की सामाजिक तथा राजनीतिक नैतिकता पर आधारित थी। इस प्रकार सुधारों की बौद्धिक नींव रखी गई। इन धर्म प्रचारकों की इस रचनात्मक भूमिका पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर चीनियों ने इनका विरोध किया तथा चीन में पहले से ही धर्म प्रचारक विरोधी आंदोलन शुरू हो चुके थे। वैसे भी 17वीं शताब्दी के अंत तथा 18वीं शताब्दी के आरंभ के चीनी लेखन में सुधारों की परंपरा आरंभ हो चुकी थी। अब अनेकों समकालीन बुद्धिजीवी भी सुधारों के पक्ष में लिख रहे थे। बुद्धिजीवियों का मत था कि केवल पश्चिमी ज्ञान को अपनाकर चीनी सभ्यता को नहीं संभाला जा सकता, बल्कि इसके लिए मूल्यों में पूर्ण परिवर्तन आवश्यक थे। अफीम युद्ध में चीन की पराजय आत्म सुदृढ़ीकरण आंदोलन की असफलता का अकाद्य सबूत थी। अब और अधिक सुधारों की मांग को बढ़ावा मिला। चीन को कोरिया से अपना एकाधिकार जोड़ने पर मजबूर होना, ताइवान तथा पेस्केडोर का जापान को सौंपा जाना चीन के लिए शर्मनाक था। इससे चीन में हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं हुई। सुन यात सेन ने जहां क्रांति का मार्ग चुना, वहीं खांग, यवोवेई, वांग तुंगह, थान सुथंग, युंग विंग तथा येनफू जैसे बुद्धिजीवियों ने सुधार का रास्ता बनाया। कुआंगतुंग के बुद्धिजीवी खंग यवोवेई को आधुनिक संत भी कहा जाता है। उन्होंने 6 वर्षों तक चीन का भ्रमण किया। वह संधि बंदरगाहों में विदेशियों की व्यवस्था से बहुत प्रभावित हुए। विदेशियों के पश्चिमी ज्ञान से उन्हें प्राचीन ग्रंथों को नई पृष्ठभूमि में समझने तथा कन्फ्यूशियसवाद को नया अर्थ देने में सहायता मिली। उनके विचार दकियानुसी न होकर उत्तरवादी थे। इस समय एक नए साहित्यिक गुट का उदय हुआ जो खांग को अपना नेता मानता था। 1891 में कुआंगचोउ में एक विद्यालय खोला गया जिसमें चीन के परंपरागत विषयों के साथ साथ पश्चिमी ज्ञान की भी शिक्षा दी जाने लगी। खांग ने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। मौलिक सिद्धांतों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, यह आधुनिक चिंतन का अध्ययन था। दूसरा, राष्ट्रों का उत्थान एवं पतन, द राइज एंड फॉल ऑफ द नेशंस, यह यूरोपीय शक्तियों द्वारा अमेरिका तथा अफ्रीका के उपनिवेशीकरण का अध्ययन था। तुर्की के वैभव एवं पतन का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ द ग्लोरी एंड डाउनफॉल ऑफ टर्की, इस पुस्तक में चीनी स्थिति की तुलना तुर्की से की गई है। इंग्लैंड में संवैधानिक परिवर्तनों का एक इतिहास, ए हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन इंग्लैंड, ए हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन इंग्लैंड। खांग ने कभी भी गणतंत्रवाद पर अधिक जोर नहीं दिया था, क्योंकि वह उसे चीन में न पाया जाने वाला एक आदर्श समझते थे। वह चीन के लिए इंग्लैंड जैसे संवैधानिक प्रणाली के पक्ष में थे। सुधारों के क्षेत्र में खांग जापान का अनुकरण करते थे। उन्होंने पुस्तकों में कुछ समय पहले के जापानी सुधारों का वर्णन करते हुए भी एक पुस्तक लिखी। खांग ने चेतावनी दी कि यदि चीन सतर्क न हुआ तो शीघ्र ही उसे अपने पड़ोसियों के हाथों लियाओ तुंग तथा ताइवान को खोना पड़ेगा। उनकी यह भविष्यवाणी 1895 ईस्वी में सत्य सिद्ध हुई। इससे वह सम्राट कुआंगशू के शिक्षक वांग तुंग के करीब आ गए। मौका मिलते ही उन्होंने खांग का परिचय सम्राट से करवाया।